एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने अमेरिकी साहित्य पर कह सकते हैं कि एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। रॉबर्ट स्टोन का 1974 का उपन्यास डॉग सोल्जर्स, इसे नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था।
हाँ, रॉबर्ट स्टोन, मतलब ये नाम सुनते ही 20वीं सदी के उत्तरार्ध का अमेरिकी समाज आंखों के सामने आ जाता है। वो खुद नौसेना में रहे, फिर 60s के दशक का वो काउंटर कल्चर वाला दौर देखा।
हाँ, वो केन केसी वाली बस यात्रा और वो सब।
बिल्कुल, और फिर वियतनाम में पत्रकारिता, मतलब युद्ध को बहुत करीब से देखा उन्होंने। इन सब अनुभवों ने उन्हें अमेरिकी समाज की जो अंदरूनी परतें हैं, जो दरारें हैं, उन्हें समझने का एक बहुत ही अलग नजरिया दिया।
सही कहा, और वो चीज उनके लिखने में दिखते भी है। एकदम सीधी सटीक भाषा, गहरा कटाक्ष और किरदारों के मन में उतर जाने की गजब की क्षमता। डॉग सोल्जर्स को तो खैर उनकी मास्टरपीस माना ही जाता है।
ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, असल में ये वियतनाम युद्ध की जो नैतिक गिरावट थी और अमेरिका में जो एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन आ रहा था, उसके बीच का पुल है ये किताब।
तो आज हम इसी पुल पर चलने की कोशिश करेंगे, कहानी की परतों को खोलेंगे, किरदारों के सफर को समझेंगे और वो बड़े सवाल जो ये नॉवल उठाता है उन पर बात करेंगे।
तो कहानी शुरू होती है वियतनाम से, साइगोन, 70 का दशक, युद्ध अपने आखिरी बहुत थका देने वाले दौर में है। माहौल में अजीब सी घुटन है, एक नैतिक दिवालियापन जैसा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
और यही हमारी मुलाकात होती है जॉन कॉन्वर्स से, एक अमेरिकी पत्रकार।
हाँ, जॉन कॉन्वर्स पहले नाटककार बनने की कोशिश की, फेल हो गया, अब पत्रकार है, लेकिन युद्ध को जैसे बस देख रहा है, महसूस नहीं कर पा रहा है, अंदर से सुन्न पड़ गया है।
और शायद इसी सुन्नपन को तोड़ने के लिए वो कुछ खतरनाक करने का सोचता है।
हाँ, या शायद उस अराजकता में कोई मौका देख रहा है, ये कहना मुश्किल है, पर वो फैसला लेता है एक बहुत बड़े रिस्क का।
ये सिर्फ पैसे की बात नहीं लगती है ना, कुछ ज्यादा गहरा है शायद, जैसे जानबूझकर अंधेरे में कूदना चाहता हो।
बिल्कुल, एक तरह की एग्जिस्टेंशियल बोरियत कह सकते हैं। वो अपनी इस जड़ता को तोड़ना चाहता है, वो इसे एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज की तरह देखता है, और वो चैलेंज है हेरोइन की स्मगलिंग।
हेरोइन? हाँ, वियतनाम से?
हाँ, 3 किलो शुद्ध हेरोइन वियतनाम से निकालकर बर्कले कैलिफोर्निया अपनी पत्नी मार्च तक पहुंचाने का प्लान है।
और इस काम के लिए उसे किसी की जरूरत पड़ती है।
हाँ, उसे एक कुरियर चाहिए और वो चुनता है रे हिक्स को।
रे हिक्स, ये कौन है?
एक पूर्व अमेरिकी मरीन, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो ज़ेन बौद्ध धर्म भी पढ़ता है और नीचे का भी फैन है। मतलब एक तरफ शांति की तलाश, दूसरी तरफ इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत कोड।
बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है।
हाँ, हिक्स का अपना एक अलग ही कोड है जीने का। वो पैसे के लिए ये हेरोइन ले जाने को तैयार हो जाता है, कॉन्वर्स के लिए वो बस एक मोहरा है, एक टूल।
और तीसरा किरदार है कॉन्वर्स की पत्नी मार्ज।
मार्ज बर्कले में किताबों की दुकान में काम करती है, अपनी जिंदगी से उभी हुई, थोड़ी नशीली गोलियों पर निर्भर। उसे बस इतना बताया गया है कि हिक्स नाम का आदमी एक पैकेज लाएगा।
तो यहाँ हेरोइन सिर्फ ड्रग्स नहीं है, ये एक सिंबल है ना?
बिल्कुल, ये वियतनाम के उस नैतिक कीचड़ का, उस सड़न का प्रतीक है जिसे कॉन्वर्स सीधे अमेरिका के दिल में इम्पोर्ट कर रहा है। और सवाल यही उठता है कि जब दूर के युद्ध का जहर घर में आता है तो क्या होता है।
और इसका असर दिखने में देर नहीं लगती, कहानी कैलिफोर्निया पहुंचती है, बर्कले।
हाँ, बर्कले जहाँ कभी 60s के हिप्पी सपने थे, अब वो सब फीका पड़ चुका है। मार्ज अपनी दुनिया में खोई हुई है, गोलियों के नशे में।
तभी हिक्स पहुंचता है हेरोइन के साथ।
हाँ, एक जापानी तलवार के केस में छुपा कर लाता है, लेकिन जैसे ही वो मार्ज को पैकेज देता है, लगभग तुरंत उन पर हमला हो जाता है, दो बदमाश, डैनस्किन और स्मिटी।
ओहो, मतलब प्लान शुरू से ही गड़बड़ था।
बिल्कुल, हिक्स अपने मरीन वाले स्किल से एक को तो पकड़ लेता है, दूसरा भाग जाता है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि वो फंस गए हैं। उनके पीछे एक करप्ट फेडरल एजेंट एंथिल पड़ा है, उसे वो हेरोइन चाहिए।
तो अब ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं रही, ये जान बचाने की भागदौड़ बन गई।
हाँ, हिक्स और मार्च, दो अजनबी जो अब उस जहरीले बैग से जुड़े हैं, उन्हें भागना पड़ता है। मार्च के लिए तो ये जैसे नींद से जागना है, उसकी वो सुस्त जिंदगी अचानक एक भगोड़े की हकीकत बन जाती है।
उनका ये भागना कैसा है?
ये दक्षिण की तरफ एक लंबी हताश यात्रा है, जैसे अमेरिकी सपने का जो मलबा बचा है उसके बीच में से गुजर रहे हो। रास्ते में अजीब अजीब लोग मिलते हैं, जले हुए हिप्पी, पागल ड्रग डीलर, शिकारी जैसे लोग। कैलिफोर्निया का वो सुनहरा सपना नहीं बल्कि एक डरावना चेहरा दिखता है।
और इस भाग दौड़ में वो हेरोइन, उसका क्या होता है?
वो हेरोइन अब सिर्फ माल नहीं रहती, वो उनके सर्वाइवल का हिस्सा बन जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने लगते हैं, दर्द भुलाने के लिए, शायद हिम्मत जुटाने के लिए। तो वो जहर उनका सहारा भी है और उनको और डुबाने वाला कारण भी।
और पीछे वो एजेंट एंथिल लगा हुआ है।
हाँ, एंथिल वो सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर नहीं है, वो जैसे पूरी सड़ी हुई व्यवस्था का चेहरा है। वो उतना ही खतरनाक और अनैतिक है जितने वो अपराधी हैं। वो दिखाता है कि सिस्टम खुद कितना बीमार है।
लेकिन कहानी सिर्फ हिक्स और मार्च की नहीं है, कॉन्वर्स का क्या हुआ, जिसने ये सब शुरू किया था?
हाँ, कॉन्वर्स उसे हीरोइन के असली मालिक पकड़ लेते हैं, और वो जो दुनिया को एक बौद्धिक दूरी से देख रहा था, अब उसे असली टॉर्चर झेलना पड़ता है, शारीरिक भी मानसिक भी। उसका वो सारा इंटेलेक्चुअल दिखावा टूट जाता है।
मतलब हकीकत से सामना होता है उसका।
सिको के पहाड़ों में एक कम्यून, उसका दोस्त डाइटर चलाता उसे। वो जो प्लानर था अब एक टूटा हुआ मोहरा बन गया है।
और उधर हिक्स, वो अपने जेन और नीचे वाले कोर्ट के साथ क्या कर रहा है?
हिक्स का कोर्ट भी कसौटी पर है। इस हिंसा और भगदड़ में उसका वो फिलॉसफी वाला नकाब उतरने लगता है। उसे जिंदा रहने के लिए वो सब करना पड़ता है जिससे वो शायद बचना चाहता था। वो खुद ही सोचता है एक जगह कि यहां अच्छा बुरा कुछ नहीं है, बस जो है वो है, बचने के लिए जो करना पड़े वही सच है।
मार्च के साथ उसका रिश्ता भी बदल रहा होगा।
हाँ, वो अब सिर्फ कुरियर और रिसीवर नहीं है, एक अजीब सी हताशा भरी नजदीकी आ जाती है। वो चाहते ना चाहते हुए भी मार्च का प्रोटेक्टर बन जाता है। असल में वही डॉग सोल्जर है, एक सैनिक जिसके पास लड़ने के लिए कोई वजह नहीं, कोई देश नहीं, बस एक बेमतलब की लड़ाई है।
और मार्च की अपनी यात्रा, वो कैसे बदलती है?
मार्च का ट्रांसफॉर्मेशन गजब का है। वो नशे में डूबी पैसिव विक्टिम से एक एक्टिव सर्वाइवर बनती है। हिक्स के साथ भागते हुए वो अपनी गोलियों की लत से बाहर आती है, हालात की सच्चाई को देखती है। उसमें एक हिम्मत जागती है, जीने की जिद। वो उन मर्दों के बनाए खेल में फंसी आम इंसान है जो बस बचना चाहती है।
और फिर सारे धागे आकर मिलते हैं न्यू मेक्सिको के उस कम्यून में।
हाँ, वही कम्यून जिसका पता कॉन्वर्स ने उगला था। हिक्स और मार्ज थक हार कर पनाह लेने वहीं पहुंचते हैं।
और बाकी सब भी वहीं पहुंच जाते होंगे।
हाँ, कॉन्वर्स को उसके कैप्चर्स वहीं लाते हैं, और एजेंट एंथिल अपने आदमियों के साथ पीछा करते हुए पहुंच जाता है। वो कम्यून जो शायद कभी किसी आदर्श के साथ शुरू हुआ होगा,
शांति, प्रकृति, वो सब।
हाँ, वही। लेकिन अब वो जगह टूटे हुए आदर्शों, पैरानोया और अजीब पंथ जैसे माहौल का अड्डा बन चुकी है, और वहीं होता है क्लाइमैक्स,
आखिरी टकराव।
हाँ, रेगिस्तान के खुले आसमान के नीचे एक भयानक खूनी गोलीबारी। हिक्स अपने वॉरियर कोड के आखिरी दुखद प्रदर्शन में लड़ता है, पूरी कुशलता से लेकिन क्रूरता से भी।
लेकिन वो बच नहीं पाता।
नहीं, वो मारा जाता है पहाड़ पर अकेला, एक ऐसी लड़ाई में जो शुरू से ही उसकी नहीं थी। उसकी मौत भी उतनी ही निरर्थक लगती है जितनी वो पूरी सिचुएशन।
और कॉन्वर्स और मार्च का क्या होता है?
कॉन्वर्स बच जाता है, पर पूरी तरह टूट चुका है, उस हत्याकांड में फंसा हुआ। उसका वो दिमागी खेल भयानक हकीकत बन गया, और मार्ज वो बच निकलती है, पता नहीं कैसे, शायद सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और किस्मत से। वो जंगल से बाहर आती है, अकेली, सदमे में। हाथ में वो हेरोइन का बैग है जो बेकार है।
उपन्यास का अंत भी बहुत सुकून देने वाला नहीं है।
बिल्कुल नहीं। मार्च पकड़ी जाती है, लेकिन किसी विलन के हाथों नहीं, बल्कि सरकारी अफसरों के हाथों।
और वो अफसर?
वो एकदम उदासीन है, जैसे ये उनके लिए बस एक और फाइल हो। ये दुखद चक्र जैसे पूरा हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन लगता है।
ये कहानी सिर्फ प्लॉट नहीं है, इसके थीम्स बहुत गहरे हैं। एक तो साफ है युद्ध का असर, वियतनाम का जहर अमेरिका कैसे पहुंचा।
हाँ, वो हेरोइन इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, जैसे कॉन्वर्स ने युद्ध की गंदगी को फिजिकली इम्पोर्ट कर लिया।
और दूसरा वो काउंटर कल्चर के सपनों का टूटना, 60s के जो आदर्श थे
वो सब इस नॉवल में ध्वस्त होते दिखते हैं। वो कम्यून उम्मीद की जगह नहीं, पागलपन का अड्डा है। डाइटर का वो आइडियलिज्म खोखला साबित होता है। ये उस पूरी पीढ़ी के मोहभंग की कहानी भी है।
और फिर एक और बात है, इस बेमतलब दुनिया में किसी कोड, किसी उसूल की तलाश, जैसे रे हिक्स करता है।
हाँ, हिक्स का वो जेन, नीचे, मार्शल आर्ट्स का मिला जुला कोड, वो कोशिश करता है लेकिन अंत में वो भी फेल हो जाता है। शायद स्टोन यही दिखा रहे हैं कि जब दुनिया ही नैतिक रूप से खोखली हो तो अकेले इंसान के उसूल कितने टिक सकते हैं।
ये नॉवल थोड़ी फिल्म नोयर वाली फील भी देता है ना, माहौल, किरदार, कोई हीरो नहीं।
बिल्कुल, डार्क, निराशाजनक माहौल और किरदार सब ग्रह हैं। सोचने वाला कॉन्वर्स भी फंसता है और एक्शन लेने वाला हिग्स भी अंत में मारा जाता है। कोई रास्ता सही साबित नहीं होता और भ्रष्टाचार तो हर लेवल पर है। एंथल जैसे एजेंट दिखाते हैं कि सिस्टम भी उतना ही बीमार है।
स्टोन की लिखने की स्टाइल, हाँ, वो भी कमाल की, एकदम कसी हुई।
हाँ, बहुत सदीवी भाषा है। वो साइगोन की गर्मी हो या कैलिफोर्निया का रेगिस्तान या गोलियों की आवाज, अब सब महसूस करते हैं।
और वो अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी कहना,
उससे हमें उनके अंदर का डर, उनकी उलझन सब पता चलती हैं। लेकिन ये भी पता चलता है कि वो सब कितने अकेले हैं, एक दूसरे से कटे हुए, और सिंबल्स भी बहुत पावरफुल हैं। हेरोइन, रेगिस्तान।
इस नॉवल को पढ़ना, मतलब कैसा अनुभव है? हल्का तो नहीं है बिल्कुल?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेचैन करने वाली किताब है। पढ़ने के बाद सुकून नहीं मिलता, बल्कि एक गहरी उथल पुथल महसूस होती है। सोचने पे मजबूर करती है। हिंसा है, पर वो आपको डराती है, रोमांचित नहीं करती।
तो इसकी स्थायी छाप क्या है? ये क्यों आज भी पढ़ी जानी चाहिए?
मेरे ख्याल से ये अमेरिकी इतिहास के खास वक्त का आईना तो है ही, लेकिन ये जो सवाल उठाती है नैतिकता पर, करप्ट सिस्टम पर, टूटे हुए सपनों पर, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। ये युद्ध, काउंटर कल्चर, अमेरिकी सपने, इन सबके रोमांटिक विचारों को तोड़ती है।
शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम नैतिक रूप से फिसलते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। कॉन्वर्स का एक फैसला कितनी तबाही लाता है।
हाँ, और ये भी कि कैसे एक देश के सामूहिक पाप, जैसे कोई अन्याय वाला युद्ध, घूम फिरकर उसी के लोगों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, उनकी आत्माओं को बीमार करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद कभी पुरानी नहीं होती।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकेट्रन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।